मंथन आयू को प्रपोज करने के लिए क्लब में आया हुआ था। उसने आयू को भी वहां बुलाया था। वहां उसे आरव मिला था, जहां बातों बातों में मंथन ने आयू को प्रपोज करने की बात कही। मंथन की बातें सुनकर आरव परेशान हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया। उसने मंथन को वहीं पर छोड़ा और खुद बाहर पार्किंग एरिया में आ गया। आरव अपनी गाड़ी के पास खड़ा खुद से बोला, थैंक गॉड तुम साक्षी के भाई हो, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करता। वैसे जो भी हो, तुम काफी स्वीट हो जो आयु से पहले मुझे सच बता दिया। मेरी आयु को मेरे अलावा कोई प्रपोज नहीं कर सकता और शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। इससे पहले कि कोई और उसे ले जाए, मुझे उसे सीरियस होकर बात करनी होगी। बहुत हो गया ये एक दूसरे से इरिटेट होना। आरव वहां खड़े होकर खुद से बात कर रहा था, तभी पार्किंग एरिया में आयु की गाड़ी आई। वो वहां आयु के ही आने का वेट कर रहा था। जैसे ही आयु गाड़ी से बाहर निकली, आरव ने आईज रोल करके कहा, हद है यार, इसे प्रपोज कोई और करने वाला है और पहनकर यहां मेरी दी हुई ड्रेस आई है। इसे पहनने को कुछ और नहीं मिला था क्या जो ये ड्रेस पहनकर आई है? और इतना रेडी होकर आने की क्या जरूरत थी? कहीं इसे पहले से ही सब पता तो नहीं? आयु अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर क्लब की तरफ बढ़ रही थी, तभी आरव तेज कदमों से चलकर उसके पीछे गया और उसे खींचकर दीवार से लगा दिया। उसकी इस हरकत पर आयु घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसने आरव का चेहरा देखा, उसने राहत की सांस ली। फिर उसने आरव के चेस्ट पर मारते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? अभी अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता, ऐसे कौन किसी को खींचकर दीवार से लगाता है? छोड़ो मुझे। आरव की इस हरकत पर आयु उससे गुस्सा हो गई। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम्हें तो आज रेस्ट करना था ना? जब मेरे साथ कहीं चिल करने की बारी आती है, तब कभी तुम बीमार हो जाती हो तो कभी तुम्हें रेस्ट करना होता है। अब यहाँ क्लब में क्या कर रही हो, वो भी इस क्लब में? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, आरव ने भी चिढ़कर जवाब दिया। आरव की बात सुनकर आयु ने सिर हिलाकर कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? एग्जाम के बाद रिलैक्स भी करना होता है। नींद टूटी तो बस रिलैक्स करने के लिए क्लब में आ गई। हाँ तो मैं कौन सा तुमसे पहाड़ खुदवाने वाला था? मैं भी तुम्हें रिलैक्स कराने के लिए ही ले जा रहा था। आई डोंट नो एनीथिंग, मैंने तुम्हें पहले कहा था तो तुम मेरे साथ ही चलोगी। बोलते हुए आरव आयु का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। आयु को मंथन ने वहां बुलाया था, इसलिए वो आरव के साथ जाने से हिचकिचा रही थी। साथ ही वो उसके सामने मंथन का नाम भी नहीं लेना चाहती थी। आयु ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, तुम भी तो यहाँ हो ना, हम साथ में अंदर चलते हैं। फिलहाल के लिए यहीं जाते हैं, फिर कहीं और चले जाएंगे। नहीं, मुझे ये क्लब पसंद नहीं है। पता है ना यहाँ कितने अजीब लोग आते हैं, कोई ड्रग्स लेता है तो कोई हाई होकर रहता है। पिछली बार भी तुमने गलती से ड्रिंक कर ली थी, मुझे रिस्क नहीं लेना, हम किसी अच्छी जगह जाएंगे, आरव ने जवाब दिया। उसने फिर से आयु का हाथ पकड़ लिया। आयु जानती थी कि आरव के सामने जिद करना बेकार था, वो वही करता था जो उसका मन करता था। आयु ने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है चलते हैं, पर तुम्हारी गाड़ी में नहीं, मेरी गाड़ी में चलते हैं। तुम्हारी वजह से हर बार मेरी गाड़ी मुझे इसी तरह कहीं ना कहीं पार्किंग एरिया में खड़ी करनी पड़ती है और फिर अगले दिन मुझे प्रॉब्लम होती है। नो प्रॉब्लम, मेरा काम तो हो गया, फिर चाहे टैक्सी करके ही क्यों ना चले, आरव ने ईवल स्माइल करते हुए जवाब दिया। वो फिलहाल के लिए आयु को मंथन से दूर रखना चाहता था और उसका ये काम काफी आसानी से हो गया था। गाड़ी आरव ड्राइव कर रहा था जबकि आयु पैसेंजर सीट पर बैठी थी। आयु ने अपना फोन निकाला और मंथन को ना आने का मैसेज करके सॉरी बोल दिया। उसके मैसेज से मंथन थोड़ा डिसअपॉइंट तो जरूर हुआ था, लेकिन बाद में खुद को समझाकर वो वहां से निकल गया। वहीं आरव और आयु एक होटल पहुंचे। वो होटल खुराना इंडस्ट्रीज से एसोसिएट था, इसलिए आरव आयु को वहां लेकर गया था। ये जगह कितनी बोरिंग है, हम यहाँ पर खाना खाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, क्लब में होते तो पार्टी करते, आयु ने अंदर आते ही मुंह बनाकर कहा। आयु की बात सुनकर आरव हल्के से मुस्कुराया और जवाब में कहा, तुम अभी इस जगह को जानती नहीं हो, ये एक फेमस पार्टी हब है, यहाँ बिजनेस मीटिंग्स होती रहती हैं। चलो मैं तुम्हें वीआईपी एरिया में लेकर चलता हूँ, वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती। बोलते हुए आरव ने आयु का हाथ पकड़ा और उसे वीआईपी एरिया में लेकर गया। वो हिस्सा होटल के टॉप फ्लोर में था और बाकी हिस्से से काफी अलग था। वीआईपी एरिया रॉयल सूट की तरह लग रहा था। हाँ अब कह सकती हूँ कि ये जगह दिखने में तो अच्छी है, आयु ने जवाब दिया और एक चेयर पर जाकर बैठ गई। आरव उसके सामने बैठा था। पहले वो मंथन की वजह से थोड़ा परेशान था, इसलिए उसने आयु पर खास ध्यान नहीं दिया था। अब आरव उसे गौर से देख रहा था। आरव ने खोए हुए स्वर में कहा, तो फाइनली तुमने मेरी दी हुई ड्रेस पहनी, आयु ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा। हाँ तो तुमने पहनने के लिए ही तो दी थी, इसीलिए पहनी है, अब क्या बातें ही करते रहोगे या कुछ ऑर्डर भी करोगे? बोलते हुए आयु ने मेनू उठाया और आगे कहा, नहीं तुम रहने दो, मैं करती हूँ, पिछली बार भी तुमने मुझे पता नहीं क्या खिला दिया था, अब तुम चुपचाप बैठे रहो और मेरी चॉइस का खाना खाओगे। तुम मेरे साथ यहाँ आई हो तो तुम्हारे लिए इतना एडजस्ट तो कर ही सकता हूँ, आरव ने जवाब दिया। फिर आयु ने वेटर को बुलाया और ऑर्डर देते हुए कहा, व्हाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड, हर एक वेरिएंट के मिनी पिज्जाज, चाइनीज नूडल्स भी ले आना, डिजर्ट में रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी बाद में ऑर्डर कर दूंगी। आयु ने जो भी ऑर्डर दिया था उसे सुनने के बाद आरव खांसने लगा। आयु ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और कहा, क्या हुआ, अभी तो खाना आया भी नहीं और तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए? नहीं, तुमने जो भी ऑर्डर किया है वो सब खाए हुए मुझे काफी टाइम बीत गया। आई डोंट थिंक सो कि मैं ये खा पाऊंगा, मैं कुछ और ऑर्डर करता हूँ। बोलते हुए आरफ ने मेन्यू की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आयु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सोचना भी मत, तुमने ये सब कभी लाइफ में खाया तो है। तुमने सुबह जो ऑर्डर किया था वो मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने पूरा फिनिश किया था। अब तुम्हें भी सब खाना पड़ेगा। पहले नहीं पता था तुम मेरी जान लेना चाहती हो, वरना तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाता, आरफ ने बड़बड़ाकर कहा। वो दोनों ऐसे ही आपसी नोकझोंक में लगे थे। इतने में उनका खाना आ गया। आयु फूड को काफी एंजॉय करके खा रही थी, जबकि आरफ धीरे धीरे मजबूरी में एक दो बाइट ले रही थी। उसे इस तरह देखकर आयु को बहुत हंसी आ रही थी। आयु को हंसते देखा आरफ ने मुंह बनाकर कहा, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ये बदला तो तब लोगी ना जब मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी, आयु ने हंसकर जवाब दिया। आरव और आयु अपनी बातों में व्यस्त थे, तभी इस बीच वहाँ जयसिंह ओबरॉय आए। उनकी कोई मीटिंग थी जो उन्होंने डिनर के साथ अरेंज की थी। आयु पीछे की तरफ पीट करके बैठी थी, इसलिए उसे जयजी दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनकी नजर आरव पर चली गई थी। आरव को वहाँ किसी लड़की के साथ देखकर जयजी ने बड़बड़ाकर कहा, पता नहीं ये लड़का कब अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होगा। बिजनेस जितने अच्छे से संभाल रखा है, पर्सनल लाइफ को उतना ही उलझा रखा है इसने। जयजी ने फिर आरव की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनुष्का और आरव का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसकी क्लैरिफिकेशन कबीर पहले ही उन तक पहुंचा चुका था, इसलिए उनके दिल में आरव को लेकर कोई गिले शिकवे नहीं थे।
जयजी अपने क्लाइंट्स के साथ वहां बैठ गए। उनमें से किसी की नजर आरव की तरफ गई तो वो बोला, मिस्टर आरव खुराना, ये भी तो प्रोजेक्ट में एसोसिएट हैं। मैंने जब इन्हें मीटिंग का मैसेज किया था तो उनके मैनेजर की तरफ से रिप्लाई आया था कि वो बिजी हैं, और अब यहां ये किसी लड़की के साथ बैठे हैं। जाने देते हैं, उनकी तरफ से प्रेजेंटेशन फाइल आ चुकी है, उसी के बेसिस पर डिसीजन ले लेंगे, मिस्टर ओबेरॉय ने टालने के लिए कहा। वहीं इस बात से बेखबर कि आयु के पापा भी वहां पर मौजूद है, आयु ने कहा, मेरा तो हो गया है, अब तुम अपना भी जल्दी से खत्म करो, मुझे घर जाना है। चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी बात को मजाक में मत लेना, इस बार मैं सीरियस हूं, आरफ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। आरफ के पास प्रपोज करने के लिए कोई अलग से रिंग नहीं थी, इसलिए उसने अपनी लिटिल फिंगर में पहनी रिंग निकाली और आयु के सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे पास कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं लिखी हुई है जिसे बोलकर तुम्हें इंप्रेस कर सकूं। विल यू मैरी मी? आरफ की बात सुनकर आयु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो हड़बड़ाकर बोली, मजाक कर रहे हो ना? तुम सच में मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा हम दोनों के बीच तो कुछ नहीं है। किसने कहा कुछ नहीं है? हम इतनी बार एक दूसरे से मिल चुके हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुमने भी उस दिन नशे में कहा था कि मैं तुम्हें बहुत हैंडसम लगता हूं। एक लड़की को हैंडसम हस्बैंड ही चाहिए जो उसकी केयर करे। आई प्रॉमिस, मैं पूरी लाइफ तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगे। और मैंने पहले ही कहा था, आई एम नॉट किडिंग, आरफ ने सीरियस फेस के साथ कहा। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर एक कपल बैठा था, उन्हें आरफ की बातें सुनाई दे रही थी, तो उनमें से लड़के ने सीटी बजाई और जोर से चिल्लाकर कहा, कम ऑन मैम, हाँ कह दीजिए। उसका साथ निभाते हुए उसकी गर्लफ्रेंड ने भी कहा, अगर कोई इतना हैंडसम लड़का मुझे इस तरह रोमांटिक वे में प्रपोज करता तो मैं उसे उसी वक्त हाँ कह देती। उस कपल के चिल्लाकर बात करने की वजह से मिस्टर ओबेरॉय और उनके क्लाइंट्स का ध्यान आरफ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। आरफ जिस पोजीशन में बैठा था उससे साफ हो गया था कि वो उसे प्रपोज कर रहा था। आयु असमंजस की स्थिति में वहां खड़ी थी, आरफ उसके घुटनों पर था, जबकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे क्या जवाब दे। वो किसी और मकसद से उसके करीब जाने का सोच रही थी, जबकि आरफ के दिल में कुछ और ही था। मुझे नहीं पता, आयु ने बेचैनी के साथ जवाब दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसने दूसरी तरफ देखा, उसके सामने जयजी थे जो कि अपने बाकी क्लाइंट्स के साथ मौजूद थे। वहीं जयजी ने आयु को वहां देखा तो उनके चेहरे पर भी गुस्से के भाव थे।